रेहान ने एक बार फिर फोन की तरफ नजरें घुमाई और निया के नाम से आए मैसेज को पढ़ने लगा। मैसेज पढ़कर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने पूरा मैसेज पढ़ा, फिर शान की तरफ नजरें उठाते हुए गुस्से से बोला, उसने तुझे मैसेज किया और तूने मुझे बताया भी नहीं, और अब उसके ये मैसेज करने का क्या मतलब हुआ? तुझसे जुड़ा रिश्ता तो उसने सालों पहले तोड़ दिया था ना, फिर अब तुझे कॉन्टैक्ट क्यों कर रही है? क्या तू फिर से उससे बात करने लगा है? देख, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, मैंने पहले भी तुझे कहा था कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी, उसके प्यार के जाल में फंस गया और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने इतनी बेदर्दी से तेरे प्यार और विश्वास का कत्ल किया कि तू टूटकर बिखर गया था। कितनी मुश्किल से मैंने तुझे संभाला था। अब तू फिर से उसके खेल का मोहरा नहीं बन सकता। मैं तुझे ऐसा बिल्कुल करने नहीं दूंगा। वो निया इंसान नहीं, डायन है। उसकी जैसी लड़कियां कभी किसी एक की नहीं हो सकती। वैसे भी तू माने या ना माने, पर अब भाभी से तेरी शादी हो चुकी है। मैं तुझे उन्हें धोखा नहीं देने दूंगा। उस निया जैसी धोखेबाज और फरेबी लड़की के लिए मैं तुझे भाभी का दिल नहीं तोड़ने दूंगा। वो इतनी अच्छी है, बस तुझे उनकी कदर नहीं है। वही हैं जो तेरे लिए बनी है। प्लीज़ अपने बदले के चलते या निया के झूठे प्यार के जाल में फंसकर उनके साथ गलत मत करियो। रेहान की बात सुनकर शान ने उसको घूरते हुए कहा, हो गया तेरा या कुछ और भी कहना बाकी है? अगर सब भूल लिया हो तो अब मेरी बात सुनेगा? रेहान खामोश हो गया तो अब शान ने आगे कहना शुरू किया, मेरा निया से सालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा है और ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानता है। एक बार उसके झूठे प्यार के जाल में फंस गया था, दोबारा जानबूझकर वही गलती मैं कभी नहीं करूंगा। वैसे भी उस जैसी धोखेबाज और कैरेक्टरलेस लड़की के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जिस दिन उसने हमारा रिश्ता तोड़ा था, उसी पल से उसके लिए मेरा सारा प्यार खत्म हो गया था। उसके बाद उसने जो किया, उसके बाद अगर उसको मुझसे कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत और दर्द होगा। कल शाम को ये मैसेज आया था, शायद फिर से वो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती होगी। अब उसे समझ आ गया होगा कि अभी उसके लिए मेरे साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए ये घटिया हरकतें शुरू करती है उसने। पर इस बार नहीं, इस बार उस अमरजीत ठाकुर और अर्जुन ठाकुर के साथ साथ मैं उसको भी सड़क की धूल बनाकर ही दम लूंगा। बहुत गुरूर है उन्हें पैसों का, तो बहुत जल्द उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगा। किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, हर उस इंसान को सजा मिलेगी जिसने मुझे और मेरे परिवार पर प्रहार किया था। हमें दर्द देने वालों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है उनकी बर्बादी की, और जैसे घर डूबने पर सबसे पहले चूहे अपने बिल से निकलकर भागते हैं, वैसे ही अपनी बर्बादी को अपने सामने देख निया उससे बचने के लिए मेरा सहारा लेना चाहती है। पर ऐसा होगा नहीं। सब शुरू उस अमरजीत ठाकुर ने किया था। डैड को धोखा दिया माँ के साथ, उसके बाद निया ने उसके बेटे से शादी करके जो मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुँचाई है, उन सबका हिसाब होगा अब, और सज़ा मैं दूंगा उन्हें। शान की आंखों में गुस्सा, नफरत और अपने लक्ष्य को पाने का जुनून नजर आ रहा था। रेहान भी काफी गुस्से से लग रहा था। उसने उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी, मैं उसमें तेरा पूरा साथ दूंगा। बस एक बात याद रखियो, इस जंग में ना तुझे कुछ होना चाहिए, ना ही हमारे परिवार पर कोई खतरा आना चाहिए। और भाभी भी अब उस परिवार का हिस्सा है, तो जो भी करियो बहुत सोच समझ कर करियो। तेरे किसी भी काम से भाभी या उनकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके बारे में सोचना बंद कर। ये लड़ाई मेरे और उस अमरजीत ठाकुर के बीच है। इसके बीच मेरे परिवार का कोई इंसान नहीं आएगा। बहुत खो लिया मैंने, अब खोने की बारी उनकी है। अभी भी तो बस छोटी सी जीत हमारे हिस्से आई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसकी बर्बादी के दिन अब शुरू हो चुके हैं। देखता जा आगे आगे होता है क्या। अब चाल मैं चलूंगा और उन्हें ऐसा मात दूंगा कि वो कुछ समझ भी नहीं पाएंगे और उनसे उनका सब कुछ छीन जाएगा। रेहान उसके पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब ज़्यादा मत सोच इस बारे में, सब हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। सुनने में आया है कि अर्जुन ने वूट पर अपना शो स्टार्ट करने का फैसला लिया है। अच्छा है, इससे उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि वूट पर अभी कोई न्यू शो नहीं आ सकता। उन्हें कम से कम एक महीने इंतजार करना पड़ेगा और तब तक में उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका होगा। शान ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर रेहान भी मुस्कुरा दिया, फिर उसका फोन उसको देते हुए बोला, इसका क्या करेगा, कुछ सोचा है? इंसान नहीं है ये, चुड़ैल है। एक बार पीछे पड़ गई तो इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी इसका कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा बेकरार होने दे उसे भी, मचलने दे मेरे पास आने के लिए, तड़पने दे, उसके बाद उसका नंबर आएगा। इस महीने इलेक्शन हो जाएंगे, बड़े पापा ही जीतेंगे, ये विश्वास है मुझे। जब उस अमरजीत ठाकुर को अपनी हार का सदमा लगेगा, उसके तुरंत बाद उसकी बहू के कारनामे दुनिया के सामने आएंगे। इस बार किसी पर रहम नहीं किया जाएगा। अगर निया ने मेरा पीछा किया तो ये उस पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके किए मैसेज को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। पर उससे ज्यादा जरूरी इस वक्त हमारा शो है। हॉटस्टार पर उनके पहले ही दो शो चल रहे हैं और हमें एक महीने के अंदर उन दोनों शो को पीछे छोड़कर नंबर वन पर पहुंचना है। उसकी चिंता तू मत कर, वो मैं संभाल लूंगा। तू अब आगे की प्लानिंग पर ध्यान दे और फिलहाल तो घर जा, देर हो रही है। रेहान की बात सुनकर शान को आरवी की याद आ गई। उसका रात को उसका इंतजार करना याद आया तो वो अपना लैपटॉप बंद करने लगा। अचानक ही किसी फोन की रिंग की आवाज वहां गूंजने लगी। रेहान ने तुरंत अपना फोन चेक करते हुए कहा, मेरा तो नहीं बज रहा, तेरे फोन की रिंगटोन भी ऐसी नहीं है और केबिन में हम दो ही हैं, तो ये किसके फोन की आवाज आ रही है? ये कहते हुए उसने जैसे ही शान की तरफ निगाहें घुमाई, उसके हाथ में दूसरा फोन देखकर चौंक गया। अरे ये किसका फोन है, तूने दो दो फोन ले लिए, पर क्यों? शान ने घूरकर उसे देखा और चिढ़ते हुए बोला, बकवास मत कर, मेरा फोन नहीं है, आरवी का फोन है। रेहान ने भौंचकाकर सवाल किया, भाभी का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? उसका सवाल सुनकर शान ने तीखी नजरों से उसको घूरते हुए कहा, चुराया नहीं है मैंने, आज अंशु के एडमिशन के लिए गए थे, मैडम के पास एक बैग तक नहीं था फोन रखने के लिए, हाथ में लेकर घूमती इसलिए मैंने रख लिया, पर वापस देना भूल गया। ओ तो आज तो भाभी के साथ बाहर गया था। रेहान ने शरारती मुस्कान के साथ उसे देखा, जिससे चिढ़कर शान ने उसके सीने पर हाथ मारते हुए उसको खुद से दूर कर दिया। कुछ भी बकवास सोचने की जरूरत नहीं है, काम से गए थे। हाँ तो मैंने कब कहा कि तू भाभी के साथ घूमने गया था या डेट पर गया था, बात बस इतनी सी है कि तूने उन्हें अंशु की माँ तो मान ही लिया है। वैसे ये अच्छा ही है, उनके आने से अंशु की जिंदगी में माँ की कमी पूरी हो गई है। भले ही उन्होंने उसे जन्म नहीं दिया, पर प्यार में कोई कमी नहीं है, देखा है मैंने कितना खुश रहती है वो भाभी के साथ। रेहान की बात सुनकर भी शान ने कोई जवाब नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी बात से वो भी सहमत था। आरवी ने ना तो अंशु के हक से कोई शिकायत होने दी थी, ना ही परिवार की तरफ से उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि फोन चुप होकर एक बार फिर बजने लगा, तो दोनों का ध्यान उस तरफ गया।
किसका फोन आ रहा है यार, कौन है जिसे चैन नहीं है? अगर एक बार फोन नहीं उठा तो इंतजार करना चाहिए ना, सामने वाला खुद मौका मिलने पर फोन कर देगा, बार बार फोन बजाना जरूरी तो नहीं। रेहान की बात सुनकर शान ने फोन की तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, होगा कोई, शायद कुछ। उसने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र फोन पर शो हो रहे नाम पर चली गई और वो आगे कहते कहते रुक गया और फोन की स्क्रीन को देखने लगा। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, किसका फोन है जो तू नाम देखकर इतना शॉक्ड हो गया? रेहान ने फोन पर नजर डालने की कोशिश की, पर शान ने झट से कॉल कट करते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, कंपनी का फोन था, तुझे देर हो रही होगी ना, तू निकल, मैं भी निकलता हूँ। ले कहते हुए उसने लैपटॉप बंद किया और गेट की तरफ बढ़ गया। रेहान उसको शक भरी नजरों से देखने लगा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराकर उसके पीछे चल दिया। शान गाड़ी में बैठा आरवी का फोन देख रहा था, तब से कम 10 बार उसका फोन बज चुका था और शान बस स्क्रीन को घूरे जा रहा था। टू बी कंटिन्यूड।